नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार खरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी में 11वीं कक्षा के लिए आज का पाठ है गलता लोहा। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में एक जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। हम सबसे पहले नई कहानी क्या है इसे समझते हैं। नई कहानी 1950 ईस्वी के आसपास हिंदी कहानियों में भी असामाजिकता, अनास्था, काम कुंठाएँ, घुटन, संतरास, अकेलापन, बेसहारापन, अस्तित्ववादी विचार, विशेषतः क्षणवाद, जीवन के प्रति वितृष्णा आदि की भावनाएं स्पष्टतः परिलक्षित होने लगी। उसकी निम्नलिखित विशेषताएं खुलकर सामने आई। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऐसी कहानियों को नई कहानी कहते हैं। ऐसी कहानी में प्रायः क्लाइमेक्स या चरम बिंदु का आग्रह नहीं होता, क्योंकि ऐसी कहानियों में विशेष मनः स्थिति के निरूपण पर बल होता है। नई कहानी की विशेषता चारित्रिक असंगति है। ऐसी कहानियों में सस्पेंस का अभाव रहता है। इनमें अंतर्द्वंद्वों का सायास चित्रण नहीं होता। सांकेतिकता, बिंब विधान तथा प्रतीकात्मकता इनमें होती है। इनमें कथा तत्व नगण्य सा होता है। इनमें मुख्यतः मध्यवर्गीय शहरी जीवन के कलुषित, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त रूप का उद्घाटन मिलता है। इनमें आंचलिकता का भी आग्रह दिखाई पड़ता है। हिंदी के नए कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, अमृत राय, रघुवीर सहाय, अजीत कुमार, श्रीकांत वर्मा, मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर आदि प्रमुख हैं। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति या अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता, लेकिन हसवे की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्ध होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम धनराम के पिता इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन अचानक गंगाराम चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था कि अचानक पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वे घर पहुँचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल ना भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना भी शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। करों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई नई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लल्ला बचपन से बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हसवे के फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आम तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार के काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। अब मोहन के जीवन संघर्ष एवं मास्टर त्रिलोक सिंह के संबंध में चर्चा करते हैं। मोहन ने गांव और शहर दोनों जगहों पर संघर्ष किया, परंतु दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में दिन रात का अंतर है। गांव में मोहन का कुशाग्र बुद्धि एवं ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण बहुत ही सम्मान था। गांव के स्कूल में उसकी पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में थी। मोहन से उसके मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत उम्मीदें थीं। वह गायन में भी अव्वल था, इसी कारण वह पूरे स्कूल का मॉनिटर था। उसके मास्टर को यह उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर किसी ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। लखनऊ शहर में मोहन को एक सामान्य बालक के रूप में समझा जाता था। रमेश तो उसे अपना बिरादरी भाई कहने में भी संकोच करता था। रमेश के परिवार की औरतें तथा मोहल्ले की सभी औरतें उससे सारा दिन छोटे छोटे काम करवाती रहती थी, अतः वह अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान न दे सका। उसे वहाँ एक सामान्य स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। उस स्कूल में रात दिन काम के बोझ तथा नए वातावरण में वह अपनी कोई पहचान न बना पाया था। अध्यापक त्रिलोक सिंह। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का दोहरा व्यक्तित्व सामने आता है। एक ओर उनके व्यक्तित्व में कुछ खूबियों के दर्शन होते हैं तो साथ ही दूसरी ओर कुछ खामियां भी दिखाई देती है। खूबियां यह है कि त्रिलोक सिंह को मेधावी छात्र मोहन की अच्छी पहचान है। उन्होंने उसे कुशाग्र बुद्धि का समझकर ही स्कूल का मॉनिटर बनाया था तथा बार बार उसे प्रोत्साहित भी करते रहते थे। जब मोहन लखनऊ शहर में पढ़ने के लिए गया तब उन्होंने मोहन के पिता से उसका हाल चाल भी पूछा। खामियां, त्रिलोक सिंह के व्यक्तित्व में खूबियों की अपेक्षा खामियां अधिक दिखाई देती है। वह एक कठोर हृदय का अध्यापक है, इसीलिए विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्यार से ना करके कठोरतापूर्वक करते हैं। पढ़ाना कम और दंड अधिक देने का पक्षधर हैं वे, इसीलिए कमज़ोर छात्रों को पढ़ाने की बजाय दंडित करने में ही लगा रहता है। वह जुबान का भी बहुत कठोर है, इसीलिए धनराम को कहता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस तरह का कथन एक अध्यापक के लिए अशोभनीय है, क्योंकि अध्यापक का दायित्व तो लोहे को सोना बनाने का है। वह सजा देने के लिए बच्चों को ही डंडे का चयन करने के लिए भी कहता है। यह कठोर दंड नीति उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी की ओर संकेत करती है। वह बहुत आलसी व्यक्ति है, इसीलिए बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय केवल सजा द्वारा ही उसका निवारण करना चाहता है।